अभी रिकॉर्डिंग आप पॉज कर दीजिए, 2-3 मिनट में शुरू करते हैं। جزاكم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो सूरत तूर की आखिरी चंद आयात की तफसीर में हज़रत ने मारुफ व मसाइल कुछ लिखे हैं। अब तक हमने सिर्फ इनका तर्जुमा और खुलासे तफसीर से, जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हुई तफसीर है, तो उससे हमने एक एक आयत का अलग अलग से यानी तशरीह पढ़ी थी और कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। अब मारुफ व मसाइल जो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मारुफ़ुल कुरान में लिखे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं पेज नंबर 186 से 186। तो इसमें हज़रत ने सिर्फ ये फ़इन्नका बिअय्युनिना इसकी तफसीर में लिखा है कि यानी इसका तर्जुमा क्या था कि बेशक आप हमारी नज़रों में हैं। ठीक है, तो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि दुश्मनों की दुश्मनी और मुखालिफत व तकज़ीब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आखिर सूरत में पहले तो ये फरमाया कि आप हमारी नज़रों में हैं, यानी हमारी हिफाजत में हैं, हम आपको उनके हर शर से बचाएंगे, आप उनकी किसी बात की परवाह ना करें, जैसा कि दूसरी एक आयत में इरशाद है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा देंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके ऊपर कोई सवाल, कोई तालिब इल्माना सवाल होना चाहिए, आप तालिब इल्म हैं तो कोई सवाल नहीं आता किसी के जहन में, अगर है तो पूछें, और ये एतराज़ी सवाल नहीं होगा बल्कि ये तालिब इल्माना सवाल होगा, यानी इल्म हासिल करने के लिए अपने जहन में अगर कोई इश्काल आता है, कोई कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर एक तालिब इल्म सवाल करता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल जो होता है वो बुरा सवाल नहीं होता। ठीक है, तो किसी के ध्यान में कोई सवाल आ रहा है इसके ऊपर, अगर आ रहा है तो पूछें। या फिर हम पूछेंगे आपसे सवाल। है कोई इसके सवाल? चैट विंडो भी खोल लेते हैं। अच्छा चलें, आप सवाल नहीं करते तो हम सवाल करते हैं कि यहाँ पे जो फरमा रहे हैं कि आपको उनके हर शर से बचाएंगे, तो क्या हमने मुअव्वज़तैन की तफसीर नहीं पढ़ी? मुअव्वज़तैन किन दो सूरतों को कहते हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक व कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, है ना? तो उसके अंदर क्या है वाकया शान नुज़ूल इन दो सूरतों का, क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो चीज़ों को भूलना शुरू हो गए थे, है ना? जादू हो गया था ना, जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया था। और दूसरी क्या बात कि जैसे ग़ज़वा उहद का हम वाक़या पढ़ते हैं, तो ग़ज़वा उहद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को चोटें आई थीं, दुश्मनों ने आपको ज़ख्मी यानी ज़ख्मी हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो जो ज़रा मुबारक जो थी वो घुस गई थी चेहरे के अंदर और दांत भी जो है वो शहीद हो गए थे, है ना, खून भी निकलना शुरू हो गया था। उसी तरीके से ताइफ के मौके के ऊपर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे मक्का मुकरमा के दौर में, तो वहाँ पर जो है वो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बदबख्तों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उससे भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पर तो जो हम पढ़ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुँचेगी ही नहीं, यहाँ तो पता लग रहा है कि जी खून भी बह रहा है और जादू भी हो रहा है, तो तकलीफें तो बहुत सारी पहुंच रही हैं। यानी बस यानी डायरेक्टली गम वाली तकलीफ तो चले अलग चीज है ना, ठीक है, कि आपसे सलम को गम पहुंचता था कि लोग जो है वो बात नहीं समझ रहे हैं, बात मान नहीं रहे और जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, है ना। या फिर ये कि औलादों के वास्ते से नबी अलैहिस्सलाम को लोगों ने गम पहुंचाया कि आपसे सलम की दो बेटियों को अबू लहब के बेटों ने तलाक दे दी, राइट। और आपसे सलम की जो सबसे बड़ी बेटी थी हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको जो है वो ऊंट से गिरी काफिरों की तकलीफ पहुंचाने की वजह से, ठीक है ना। वो जख्म जो है वो हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आखिरी वक्त तक रहा और उसी जख्म से ही इनका इंतकाल हुआ। तो गम तो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत सारे पहुंचे, लेकिन जिस्मानी तकलीफ भी पहुंची। तो फिर यहाँ पर जो ये आयतें हैं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम आपको इंसानों से बचाएंगे, व इन फइन्न कबी आयुनिना, आप हमारी नजरों में हैं, तो फिर अब इसका क्या मतलब है जी। चले, अब आपने सवाल नहीं किया तो हमने आपसे सवाल कर लिया कि अब इसका क्या मतलब है, इसका कोई जवाब दे सकता है कि इन दोनों बातों में जो बज़ाहिर तजाद नजर आ रहा है, राइट, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है, तो हाउ डू यू रिजॉल्व दिस, ठीक है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, कोई इसका जवाब दे सकता है। जिस्म के ऊपर असर हो सकता है लेकिन रूह की हिफाजत रहेगी, ठीक ठीक अच्छा जवाब है कि जिस्म के ऊपर असर हो सकता है, ठीक है। चलें, जिस्म के ऊपर ये बात तो उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि जो जादू का असर हुआ था तो वो जिस्मानी असर था, आप सरम की रूह के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक ये एक एक जवाब है। दूसरा कोई जवाब नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जी, बेशक नहीं है, वो तो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उन्होंने जो कत्ल के मंसूबे बनाए वो नाकाम हुए, ठीक है, कत्ल के मंसूबे नाकाम हो गए। वो पत्थर फेंकने का भी एक मंसूबा बनाया था यहूदियों ने, के दरवाजे के नीचे बिठाया था और ऊपर से एक आदमी को कहा था कि पत्थर फेंको, लेकिन आपसे सलम को पहले से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया और आपसे सलम वहां से निकल गए, और बाद में वो पत्थर फेंकने के लिए जो आदमी बैठा हुआ था ना, वही आदमी मुसलमान भी हो गया। खैर, ठीक है, ये भी एक एक हो गया। और कोई, ठीक है, चले, ये तो पक्की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म को नुकसान तो पहुंचा था, पहुंचता था, लेकिन रूह को नुकसान नहीं पहुंचता था, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या, अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सब्र भी हमें सिखाना चाहते हैं, सब्र भी सिखाना चाहते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा जवाब है कि जब जिस्मानी अजियतें पहुंचेंगी तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, या इवन जादू का जब असर होगा हो जाएगा किसी के ऊपर तो उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये उम्मत की तालीम, ठीक है, तालीम के लिए था ये सब कुछ। आपसे सलम को तकलीफें पहुंची हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो असल मकसूद है कि आपसे सलम की कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, लोगों से हिफाजत करेंगे, ठीक है। तो जिस्मानी हिफाजत तो इस हद तक हुई ना कि आपसे सलम को ये कत्ल नहीं कर सके। अगर ये नबी अगर ये जो काफिर मुशरिक थे ये नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते, खुदा ना खास्ता, राइट, अगर कत्ल कर देते तो होता क्या, तो आप सरसरम यानी फिर होता क्या, उससे क्या नतीजा निकलता अगर ये नबी अलैहिस्सलाम की जान लेने में कामयाब हो जाते, ठीक है, ये सवाल चलें, इस सवाल के जवाब दें, अगर जान लेने में कामयाब हो जाते तो क्या होता है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, इससे क्या नतीजा निकलता है, इससे अगर हुजूर की जिंदगी में कोई भी मुश्किलें ना होती तो लोग कहते कि इनका इस्लाम पर चलना आसान है, हम नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं। हाँ, ये भी चलें, ठीक है, ये भी उम्मत की तालीम के लिए, कि भी मुश्किलात के साथ आपने काम करना होता है। देखिए, अगर नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी को ख़त्म करने में ये लोग कामयाब हो जाते तो उससे होता क्या? एक फ़र्द की ज़िंदगी चली जाती? नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे जो अल्लाह ताला ने काम लगाया था, मकसदे ज़िंदगी, मकसदे बेअसत, वो मकसद पूरा ना होता ना, है ना? देखें, जब जादू हुआ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो जादू का असर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियावी कामों पर पड़ा, दुनियावी कामों को भूल जाते थे, वही की बातों को नहीं भूलते थे। क्योंकि अगर वही की बातों को भूल जाते तो उससे क्या होता, उससे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम की नबुवत के काम में खलल पड़ता, नबुवत के काम में, अगर वही की बातों को भूल जाते। ठीक है, तो मकसद क्या है, यानी आप सलम की जिंदगी का मकसद क्या था? अल्लाह ताला की वही को मुकम्मल करना है ना, अल्लाह ताला के मैसेज को मुकम्मल करना, कुरान को मुकम्मल करना, और कुरान की जो तशरीह नबी अलैहि सलाम ने फरमानी थी उस तशरीह को मुकम्मल करना, ये था नबी अलैहि सलाम की पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर जादू का असर आप की वही को भूलने में की शक्ल में होता तो उससे आप की पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस मुतासर होता, और अगर ये लोग नबी अलैहिस्सलाम की जान लेने में कामयाब हो जाते तो नबी अलैहिस्सलाम का जो दीन को मुकम्मल करने का मकसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ने जिस मकसद से भेजा था, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हम आपके दीन को मुकम्मल कर दें, तो दीन मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पर हिफाजत से मुराद किस चीज की हिफाजत है? यहाँ पर हिफाजत से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के मकसद बेअसत की हिफाजत है, मकसद बेअसत की, नबी अलैहि सलाम के जिस्म की हिफाजत नहीं है, ठीक है, बल्कि आप सल्लम की जान की हिफाजत, कि ये जान लेने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अगर जान लेने में कामयाब हो गए तो आप सल्लम का मकसद बेअसत मुकम्मल नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जान की हिफाजत, ठीक है, जिंदगी की हिफाजत जिसको कहते हैं, जिंदगी की हिफाजत और मकसद बेअसत की हिफाजत, कि ये दोनों चीजें ये लोग रोक नहीं सकेंगे, ठीक है ना, इसमें ये लोग रुकावट नहीं डाल सकेंगे, चाहे जादू करें फिर भी रुकावट नहीं डाल सकेंगे, चाहे आप सरसरम को फिजिकल तकलीफें पहुंचाएं फिर भी ये मकसद बेअसत की तकमील में रुकावट नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपके मकसद की हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुराद है। ठीक है, अच्छा, और किसी ने कुछ लिखा है, इससे ईमान वालों को लगता था कि जो दीन हमारे पास आया वो सादिक नहीं है, ये समझाते के नहीं, ये समझाते के हैं ने इस्लाम का सिलसिला रोक दिया, ये समझते कि हमने हमने इस्लाम का सिलसिला रोक दिया। हाँ, वो समझते इस्लाम का सिलसिला रोक दिया, या ये कि इस्लाम का सिलसिला जो है वो रुक ही जाता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं थी, वही तो उस वक्त मुकम्मल हुई ना, जा करके हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर, ठीक है ना, वहां पे जा करके वही मुकम्मल हुई है, इससे पहले अगर जान ले लेते तो फिर तो अधूरी रह जाती ना वही। ठीक है, तो बहरहाल मकसद यहाँ पे बताना जो है ना वो ये था कि बज़ाहिर जो है वो इन सारी बातों को आप देखें तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, लेकिन असल में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मकसद यहाँ पर क्या है कहने का, हिफाजत का मकसद क्या है, कि आपके मकसद बेअसत की हिफाजत वो तकमील तक पहुंचेगा, उससे पहले कोई आपको दुनिया से नहीं हटा सकता। ठीक है, अच्छा, आगे चलें। इसके बाद अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद में लग जाने का हुक्म फरमाया, जो असल मकसद जिंदगी भी है। ठीक है, यानी असल मकसद जिंदगी क्या है, कि अल्लाह ताला की इबादत करना। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन जिन्नों को और इंसानों को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। ठीक है, तो मकसद जिंदगी हमारा जो है वो अल्लाह ताला की इबादत है, और तस्बीह व तहमीद जो है वो इबादत का की एक शक्ल है। ठीक है, तो और हर मुसीबत से बचने का असली इलाज भी फरमाया, वसब्बिह बिहम्द रब्बिका हीन तकूम, यानी अल्लाह की हम्द की तस्बीह किया करें, हम्द की तस्बीह यानी تسبیح سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کی تکرار کیا کریں, اس کو ریپیٹ کیا کریں, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, ٹھیک ہے نا, دل کے جذبات کے ساتھ. آف کورس طوطے کی طرح نہیں کہ طوطا جو ہے وہ بولتا تو ہے لیکن اس کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بس خالی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد زبان سے بھی بیان کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں تحمید کرنا. اچھا, اور یہ کب کریں؟ جب کہ آپ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے نا. تقوم کس سے نکلا؟ قیام سے نکلا. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا, جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام میں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کھڑے ہوں, تو یہاں پہ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے, یا بیٹھی ہوئی حالت سے کھڑے ہو جانا, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے. اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی. وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, ٹھیک ہے. پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ تہجد کے وقت ہی کا سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں جو کھڑا ہو, یعنی نیند سے کھڑا ہو, اور پھر جو ہے وہ یعنی یہ والی دعا پڑھ لے اور پھر نماز پڑھ وضو کر کے نماز پڑھے, تو پھر اس کی نماز بھی قبول کی جائے گی, اور اس کی جو دعائیں مانگے گا تو وہ دعائیں بھی قبول کی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ان سمجھ لیں کہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اس وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے, اس وقت میں یہ دعا, یا اس وقت میں وہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی وغیرہ, ٹھیک ہے. تو بہت ساری دعائیں اس طریقے سے حدیث مبارکہ کتابوں کے اندر, تو جس کو یعنی جو آسانی سے ممکن ہو اس کو ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دل میں یہی یعنی گمان رکھنا چاہیے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو ویسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے, کہ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اب دعائیں قبول کرنے کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو کہ اکثر لوگ چونکہ نہیں سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دعائیں مانگی تھیں اور ایسے مقبول وقت میں مانگی تھیں اور ایسی مقبول جگہ میں مانگی تھیں لیکن پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوئی. جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ تہجد میں دعائیں مانگی تھیں لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی, یا یہ کہ عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفات کا وقت ہے وہاں پر دعائیں مانگی تھیں پھر بھی وہ قبول نہیں ہوئیں, ہے نا, یا ملتزم پر مانگی تھی وہ بھی قبول نہیں ہوئی, یا ایسی جگہ ویسی جگہ مانگی, ٹھیک ہے. تو اس سے نا پھر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ شیطان پھر مایوسی کا بھی شکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں یہ تفصیل سمجھنی بہت ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی شکلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ایک قبولیت یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نقد قبول ہو جانا, یعنی جیسے آپ نے مانگی ہے ویسی ہی اس کی قبولیت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے, ٹھیک ہے نا, اس کو نقد قبول ہونا کہتے ہیں. جیسے کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے چیز خریدی ادھر آپ نے کیش پیمنٹ کر دی, ختم ہو گئی بات. اور ایک ہوتی ہے نا کریڈٹ ٹرانزیکشن, کہ آپ نے جو ہے وہ چیز خریدی ہے لیکن کریڈٹ کارڈ سے پے کیا ہے. تو کریڈٹ کارڈ سے پے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بینک سے جو کیش ہے وہ دکان والے کے پاس بعد میں پہنچے گا, ابھی آپ نے خالی کریڈٹ کارڈ سے ایک اگریمنٹ کر لیا اس کے ساتھ کہ ہاں میں آپ کو بعد میں پے کروں گا, کریڈٹ پر پے کروں گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ نقد قبول نہیں ہوتی, کیش قبول یعنی نقد اس کی قبولیت نظر نہیں آتی, بلکہ کریڈٹ میں, یعنی کبھی اور جا کر کے وہ قبول ہوگی, کسی اور وقت میں جا کر کے وہ اس کی قبولیت نظر آئے گی, ٹھیک ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کتنے سال پہلے, 2500 سال پہلے, 2500 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی شکل میں قبول ہوئی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ ان لوگوں کے درمیان اپنا رسول مبعوث فرما دیجئے. کب دعا مانگی تھی؟ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا, اس وقت دعا مانگی تھی نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کب تشریف لے کر کے آئے؟ 1000 سال کے بعد تشریف لے کر کے آئے. تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت ہے जो कि हजारों साल के बाद नजर आ रही है, ठीक है ना। तो दुआ इस तरह एक तरीके से भी कबूल होती है बहुत बाद में जा करके, ठीक है। और दुआ की कबूलियत की ये भी शर्त, ये भी एक शक्ल होती है कि वो दुआ जो आपने मांगी है वो दरअसल आपके हक में बेहतर नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है, अल्लाह ताला को तो मालूम है, तो अल्लाह ताला उसको वैसे कबूल नहीं करते, बल्कि उसके बदले में कोई मुसीबत जो आने वाली थी उसको हटा देते हैं आपके ऊपर से, ठीक है। तो हमें तो उसकी कबूलियत नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक तो वो कबूल हो चुकी होती है मुसीबत हटने की शक्ल में। उसी तरीके से दुआ की कबूलियत की एक और शक्ल भी है कि आपने दुआ मांगी, ना तो वो नकद कबूल हुई, ना तो बाद में कबूल हुई, ना उसके बदले में कोई मुसीबत हटी, बल्कि उस दुआ को अल्लाह ताला ने आपके नामे आमाल के अंदर लिखवा लिया फरिश्तों से, और उसके बदले में आपको जन्नत की नेमतें मिलेंगी, ठीक है ना। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि जन्नत में उस शख्स को ऐसी नेमतें मिलेंगी तो पूछेगा कि ये मैंने मेरे किस अमल की वजह से मुझे नेमतें मिल रही हैं, तो जवाब दिया जाएगा कि वो ये उन दुआओं की कबूलियत की वजह से मिल रही हैं कि जिनकी के जो कि दुनिया में तुम्हें अता नहीं की गई थी, बल्कि आखिरत में तुम्हें ये उसके बदले में मिल रही हैं। तो वो इतनी नेमतें होंगी कि ये कहेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हो नहीं हुई होती दुनिया में, कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, बल्कि हर एक के बदले में मुझे जन्नत में मजीद नेमतें मिल जाती, ठीक है ना। इंसान की एक फितरत है कि पुरानी बातों को भूल जाता है, पुरानी चीज़ें जो है ना उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, और जो प्रेजेंट में मामला चल रहा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस वक्त ना दुनिया के अंदर वो जो उसकी प्रायोरिटीज थी कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, ये दुआ कबूल हो जाए, जब जन्नत में पहुंचेगा तो वो सारी मसले मसाइल भूल चुका होगा, और फिर यही सोचेगा कि मुझे जन्नत में और नेमतें क्यों नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो उस वक्त तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, ठीक है। तो इस तरह से ना दुआ के अंदर भी बहुत सारी तफसील है, तो हमें चाहिए कि हम दुआ के इस हकीकत को समझें, ताकि हम जो है वो किसी मायूसी या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो। Kindly share dua which you recited on WhatsApp group. Recited on. अच्छा अभी जो पढ़ी है या कौन सी वाली? भाई एक तो हमने अभी यहाँ से पढ़ी है ना, यहाँ पे एक्चुअली हमने दुआ तो नहीं पढ़ी, ये तो जो मारुफुल कुरान के अंदर लिखा हुआ है तो वो आपके सामने पढ़ दिया था, ठीक है। चाहिए कि बुक को ना डाउनलोड करके अपने सामने इसको खोल करके भी रखें, PDF लिंक भेजते हैं मारुफुल कुरान वॉल्यूम 8 का, तो उसको अपने फ़ोन पर भी आप डाउनलोड करके खोल सकती हैं आसानी के साथ, या लैपटॉप के ऊपर खोल लें तो सामने किताब तो होनी चाहिए ना। लेकिन ये जो पढ़ी थी ये दुआ नहीं थी, ये तो कलिमात थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सबको ही आते हैं, ये तीनों तस्बीहात सबको आती हैं, बस ये है कि इनका ऑर्डर बस याद कर लें, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु वाला है, फिर उसके बाद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है ना। ये एक हदीस के अंदर है कि इन तीनों कलमात को पढ़ करके जो फिर नमाज पढ़ेगा तो उसकी दुआ और उसकी नमाज कबूल होगी, ठीक है। तीसरा और चौथा कलमा वला और आखिर में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। कफारे मजलिस, इसके बाद हेडिंग है कफारे मजलिस की। फरमाते हैं कि हज़रत मुजाहिद और अबुल अहवस वगैरह आइमाए तफसीर ने फरमाया कि हीना तकूम से मुराद ये है कि जब आदमी अपनी किसी मजलिस से उठे तो ये कहे कि सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। हज़रत अता इब्ने अबी रबाह रहमतुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि जब तुम अपनी मजलिस से उठो तो तस्बीह व तहमीद करो, अगर तुमने इस मजलिस में कोई नेक काम किया है तो उसकी नेकी में ज्यादती और बरकत हासिल होगी, और अगर कोई गलत काम किया है तो ये कलिमात उसका कफ़ारा हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप मजलिस में चंद लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो अब गलत काम क्या हो सकते हैं कि आपने कोई झूठ बोल दिया, या आपने जो है वो कोई गीबत कर दी किसी की, या आपने वक्त ज़ाया कर दिया अल्लाह ताला से गाफिल, कोई ऐसी उल्टी सीधी किस्म की बात कर ली जिसमें कि यानी अल्लाह से गफलत थी, तो ये सारी चीज़ें इंसान के मजलिस के अंदर तो उससे हो जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इस तरह के जो कलमात पढ़ करके ना मजलिस से उठेगा तो उसके इन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوتی ہیں معاف فرما دیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت الا انت استغفرک واتوب الیک، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کلمات معروف القرآن کے اندر پیج نمبر 187 کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تسبیح تحمید پڑھتے وقت دھیان اللہ کی طرف تو یہ وقوف قلبی ہوگا۔ ہاں، تسبیح تحمید وغیرہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا اگر لگا ہوا ہے تو یہ وقوف قلبی کی تعریف میں ایکچولی یہ نہیں آتا، لیکن اس کو کہیں گے کہ آپ حضوری کے ساتھ تسبیح اور تحمید پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یعنی رات میں تسبیح کیجئے، اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے اور عام تسبیحات بھی، ٹھیک ہے، یعنی رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے تو رات سے مراد جو ہے وہ مغرب سے ویسے رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل رات جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بعد آپ جو تسبیح وغیرہ کر رہے ہیں تو اس حکم کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں گی، کہ گویا کہ آپ اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے، اور عام تسبیحات بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں کسی بھی وقت میں۔ ادبار النجوم کا کیا مطلب؟ یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، ادبرا یدبرو، ادبارن کا مطلب یعنی چلے جانا، غائب ہو جانا، تو جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں مراد اس سے نماز فجر اور اس وقت کی تسبیحات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب ڈان بریک ہو جاتا ہے، لائٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو ستارے چلے جاتے ہیں آسمان پر سے، غائب ہو جاتے ہیں آسمان پر سے نا، تو اس وقت کی تسبیحات یعنی نماز فجر کی، تو نماز فجر جو ہے نا وہ ذکر اذکار کرنے کا یعنی سب سے بہترین وقت، ایک نماز فجر کا وقت اور ایک نماز عصر کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ سورۃ الطور جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب آج ہمارا ارادہ تھا کہ سورۃ النجم شروع کر لی جائے، تو سورۃ النجم جو ہے یہ تھوڑی سی ذرا اس میں موضوعات شروع میں کم از کم ذرا دقیق سے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھانے کی سمجھائیں آپ کے سامنے۔ تو سورۃ النجم ہم شروع کرتے ہیں، مکی سورت ہے اور اس کے اندر 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، یعنی 27 پارے کے اندر یہ ہے، تھوڑی سی ذرا سائز میں بھی بڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم اذا هوا، اس میں اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں واو قسمیہ کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے نا، واو کا ایک مطلب تو ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اردو والا اور، انگریزی والا اینڈ، لیکن ایک اس کا استعمال ہوتا ہے قسم کھانے کے لیے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، پچھلی صورت میں ہم نے والطور، के तूर पहाड़ की कसम अल्लाह ताला ने खाई थी, उसी तरह यहाँ पर नजम की कसम खा रहे हैं। नजम का आसान तर्जुमा जो है वो सितारा है, बाकी मारूफ मसाइल में इसकी तफसील पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं सितारे की, इदा हवा जब वो गिरे, गायब हो जाए या जब वो गिरे, जैसे टूटा हुआ सितारा जो जो मीटियोर्स होते हैं तो वो गिरते हैं, तो वो मफहूम हो सकता है, या ये कि जो सितारे आसमान पे नजर आते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं नजर आना, तो वो भी मुराद हो सकता है। तो अल्लाह ताला सितारे की उस हालत की कसम खा रहे हैं कि जब वो गिरे, ठीक है। मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा, नहीं बहका तुम्हारा रफीक, साहिब कहते हैं दोस्त को, रफीक को, ठीक है, कंपेनियन को। वल्ला का मतलब गुमराह होना, बहक जाना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यानी सहाबा से मुखातिब होकर के कि तुम्हारा जो साहिब है यानी नबी अलैहिस्सलाम, वो यानी बहके नहीं, यानी वो गलत फहमी में मुबतला नहीं हुए। वमा गवा, और ना वो बेराह चला, यानी वो अपने राह से भटके भी नहीं, ठीक है। आप सरसरम ना अपने रास्ते से भटके, ना किसी किस्म के कोई गुमराही का शिकार होए। वमा यंतिकु अनिल हवा, यहाँ पर वाव का तर्जुमा और से करेंगे। माँ का मतलब नहीं, पिछली आयत में भी माँ जो था वो नहीं के मानी में था। माँ नाफिया कहते हैं इसको, नफी करने वाला माँ। यंतिकु नतका यंतिकु, जैसे उर्दू में कहते हैं ना नुतुक, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज नुतुक। नुतुक का मतलब होता है कि जुबान से कुछ अदा करना, ठीक है। जैसे फलसफे की जुबान में कहते हैं कि इंसान हैवान नातिक है, बोलने वाला हैवान, ये फिलोसोफर्स कहते हैं। वैसे तो इंसान बोलने वाला हैवान नहीं है, इंसान जो है वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, ठीक है। लेकिन फिलोसोफर्स को तो सारी चीज़ें नहीं पता होती है ना, सारी उनके पास इल्म नहीं होता, तो इस वजह से वो इंसान को भी बोलने वाला जानवर कह देते हैं। खैर, उनका गुमान है, अपने बारे में भी यही गुमान होता होगा। एनीवे, हमें तो बताया कि ये अशरफुल मखलूकात है। तो खैर, उस वजह से इंसान को हैवान नातिक कहते हैं क्योंकि ये बोलने की सलाहियत रखता है। तो यंतिकु का मतलब है कि बोलना। वमा यंतिकु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला, नहीं कहा। अनिल हवा, हवा कहते हैं ख्वाहिशात को, ठीक है ना, नफ्स की जो ख्वाहिशात होती है उनको हवा कहते हैं, ठीक है। जैसे हिरसो हवा, उर्दू में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, हिरस की वजह से या हवा की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर बातें नहीं करी, ठीक है ना, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म पर कहा जो कुछ कहा, ठीक है। इसकी तफसीर भी आ रही है इंशाअल्लाह मारूफ मसाइल के अंदर। अच्छा, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, इन यहां पर नफी के लिए है कि नहीं हुआ वो इल्ला सिवाय इसके वहयुन, वही है, यानी जो कुछ आप सन फरमाते हैं ना वो कुछ नहीं है सिवाय वही के, यानी वो वही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमा रहे। यूहा, जो उन पर नाजिल हुई, जो उन पर वही की गई, यूहा, ठीक है, यानी ये जो कुछ कहते हैं ना ये वही है जो उन पर वही की गई, ठीक है ना, जो उनको अता किया गया अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उसको सिखलाया है, अल्लमहु अल्लाह ताला ने सिखाया है उसको, ठीक है, शदीदुल कुवा। अच्छा, ये एक्चुअली काफी तफसील है इसके अंदर कि अल्लमा जो फेल है यहाँ पर उसका फाइल कौन है। अल्लमहु, हु तो एक प्रोनाउन है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अल्लमा, उसने सिखाया, तो उसने सिखाया उसको, किसने सिखाया, शदीदुल कुवा, एक ऐसे ने जो कि कुवा, कुवा कहते हैं ताकत को, ठीक है, शदीदुल कुवा, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, शदीदुल कुवा, बहुत ज्यादा ताकतवर, शिद्दत के साथ ताकत रखने वाला। तो अल्लामा जो है ना, उसका जो फाइल है यानी जो डूअर है वो है शदीदुल कुवा, कि शदीदुल कुवा ने सिखाया नबी अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो शदीदुल कुवा से कौन मुराद है यहाँ पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को तालीम दी इस कुरान की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के उस्ताद बनते हैं, उस्ताद मुअल्लिम। ठीक है, उस्ताद क्या करता है? वो कहीं से सीखता है और आगे शागिर्द को सिखाता है, ये काम होता है उस्ताद का। ठीक है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है नबी अलैहिस्सलाम के उस्ताद लगते हैं। कहाँ से सीखा उन्होंने? अल्लाह ताला से चीजें सीख करके आते थे, ठीक है, और आगे नबी अलैहिस्सलाम को सिखाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने तस्किरा किया है। ठीक है ना, वरना और भी ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पे अल्लामा का जो फाइल है वो अल्लाह ताला खुद, जैसे अर्रहमान अल्लमल कुरान है ना, अर्रहमान अल्लमा अल कुरान, जिसने सिखाया अल कुरान। ठीक है, तो वहां पर अल्लामा का फाइल कौन है? अर्रहमान यानी अल्लाह ताला की जात खुद। वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तस्करा नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, वहां पे नहीं किया। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। कहीं पे फरिश्ते का तस्करा करना जो है वो हिकमत के मुताबिक होता है, और कहीं पर फरिश्ते का तस्करा ना करना हिकमत के मुताबिक होता है। ठीक है ना, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान है ना, तो वहां पर सारा अर्रहमान का मामला चल रहा है। अर्रहमान जिसने के इंसान को तख्लीक किया, फिर इंसान को जो है वो बयान करना सिखाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्लमा वही फेल है अल्लमा, लेकिन फाइल कौन है? शदीदुल कुवा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसे कि आगे हम मजीद तफसील भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को ये सिखाया, वही वही वाली बातें सिखाई। जू मिर्रा, मिर्रा भी जो है वो ताकत को कहते हैं, और जू का मतलब होता है वाला, जैसे जू इल्म, इल्म वाला, जू अकल, अकल वाला। ठीक है, जुल माल, माल वाला, उसी तरह जू मिर्रा यानी ताकत वाला, ताकत वाला। ठीक है, फस्तवा, फा तो एक अलग हर्फ है, फा का मतलब होता है फिर, यहां पर फिर से तर्जुमा करेंगे। इस्तवा, इस्तवा यस्तवी इस्तिवान का मतलब होता है बराबर हो जाना, यानी सेटल हो जाना, बराबर हो जाना, लेवल हो जाना। ठीक है ना, तो लेवल हो जाना, फस्तवा, फिर उसके बाद वो सीधा बैठ गए, लेवल होकर के बैठ गए। ठीक है, अब इसकी तफसील भी आगे आएगी इंशाल्लाह। किसी को बीच में कुछ पूछना हो तो आप लिख करके पूछ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद वह हुआ बिल उफुकिल आला, और वो हुआ का तर्जुमा वो बिल उफुक, बा का मतलब तो होता है साथ। ठीक है ना, अल उफुक, उफुक किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको होराइजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप खुले जगह पे चले जाएं, खुले मैदान में चले जाएं, तो एक जगह आपको नजर आती है ना जहां पर कि आसमान जमीन से गले मिल रहा होता है, ये उर्दू का मुहावरा भी है, आसमान जमीन से गले मिल रहा है, यानी आसमान और जमीन एक पॉइंट पे आपको मिलते हुए नजर आते हैं। या ये कि समंदर के किनारे पे चले जाएं, तो वहां पर आपको जमीन आसमान से गले मिलते हुए नजर नहीं आएगी, बल्कि समंदर आसमान से गले मिलता हुआ नजर आएगा। गले मिलने का मतलब है अटैच होना। ठीक है ना, तो उस पूरे के पूरे एरिया को जो है ना, जो आपको अपनी निगाह से नजर आ रहा है ना, उसको उफुक कहते हैं, होराइजन कहते हैं। ठीक है ना, और हमारी आंखें ऐसी हैं कि इसमें होराइजन जो है ना, वो सिर्फ एक महदूद एरिया नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा होता है, राइट एंड से लेकर के लेफ्ट एंड तक आंखों के। ठीक है ना, पूरा एक गोया के जैसे कि यानी 180 डिग्रीज, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180 डिग्रीज का जो आपको एक व्यू नजर आ रहा होता है दाहिने साइड से लेकर के ऑल द वे बाहिने साइड साइड तक, ये पूरा का पूरा जो है वो होराइजन कहलाता है। ठीक है, तो उसी को अरबी में उफुक कहते हैं। अल आला, आला का मतलब होता है ऊंचा, तो उफुकुल आला का मतलब क्या कि होराइजन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है ना कि वो जो है वो शदीदुल कुवा हैं, ज़ू मिर्रा हैं, फस्तवा, फस्तवा भी उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि वो लेवल हो गए, बैठ गए जाकर के, ठीक है। तो वो कहाँ जाके बैठे, उफुकुल आला पर जाकर के बैठे, यानी उफुक के ऊंची वाली साइड पे जाकर के बैठे, ठीक है, नीची वाली साइड पे नहीं बैठे, ऊंची वाली साइड पे जाके बैठे, ठीक है। यानी जो आसमान जमीन के गले मिलने वाली जगह होती है ना, वो नीची साइड कहलाएगी, वहां पर नहीं बल्कि जरा ऊपर की साइड पर, ठीक है ना, हायर साइड पर। सुम्मा दना फतदल्ला, सुम्मा का मतलब फिर, ठीक है, यानी देन कि इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि दना, दना का मतलब होता है नजदीक हुआ। फा फिर, अच्छा फा का तर्जुमा और से भी कर सकते हैं, कुछ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और फिर से भी कर सकते हैं उर्दू जुबान में, ठीक है। फा का मतलब पस, पस से भी कर सकते हैं, पस। तदल्ला, तदल्ला का मतलब जो है वो यानी लटक आया, यानी पहले तो ऊपर था, फिर ऊपर से जो है ना वो नीचे की तरफ आ गए। पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम उफुकुल आला पे जा करके सेटल हुए थे, इस्तवा हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गोया के लटक करके नीचे आ गए। जैसे कि होता है ना एक, मतलब एक एक ऐसी बस समझाने की खातिर कि कभी कभी आप उन्होंने कुछ वो देखा, टार्जन का कार्टून देखा है, ठीक है, टार्जन का कार्टून के अंदर, या इस तरह के जो कभी आप देखेंगे कि जैसे रस्सी कोई लटकी हुई है दरख्त की ऊंची शाख से, जो है ना वो एक रस्सी लटकी हुई है, और उस रस्सी को कोई पकड़ के जो है ना वो कहीं ऊंची जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उस रस्सी को पकड़ पकड़ करके जो है ना वो स्विंग करता हुआ जो है बिल्कुल नीचे आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे कि लटक करके जो है ना, पहले तो वो ऊंचा था, फिर वो लटक करके जो है वो नीचे आ गया, ठीक है ना। तो गोया कि ऐसे ही मामला हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो ऊपर थे। अब ये नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाउज बिल्ला कोई रस्सी पकड़े हुए थे और टार्जन की तरह से स्विंग करते हुए नीचे आ गए, ये तो हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोई स्विंग करता हुआ नीचे आ जाता है ना, तो यहाँ पर लटकने से ही मुराद है कि स्विंग करते हुए जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो जमीन पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ आके खड़े हो गए, ठीक है। पहले उफुकुल आला पे बैठे हुए थे, अब यहाँ पे आकर के नीचे आ गए, करीब आ गए नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है। फकाना काब कौसैनि औ अदना, फिर काना का मतलब हो गए, हो गया वो। काब कौसैन, फर्क दो कमान के बराबर। कौस कहते हैं जैसे तीर कमान, जो बो एंड एरो होता है, तो उसमें जो बो होता है ना उसको कौस कहते हैं, जैसे कौस कजा, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, कौस कजा को क्या कहते हैं, वो डिजाइन में नहीं आ रहा, रेनबो, राइट, रेनबो, रेन के बाद जो बो सी एक बन जाती है आसमान के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको कौस कजह कहते हैं, ठीक है। तो कौस जो है ना वो बेसिकली बो को कहते हैं, ठीक है। तो कौसैन दो बोस, दो कौस, ठीक है। अब इसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है, मारूफ मसाइल में आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हम उसको नहीं डिस्कस करते हैं। तो काबा कौसैन, कौसैन का जो दरमियान का रास्ता है ना, जो फर्क है कौसैन के, बस इतना करीब आ गए, औ अदना, या इससे भी ज्यादा करीब। अदना का मतलब होता है कि और ज्यादा करीब, ठीक है। दना का मतलब करीब, अदना का मतलब और ज्यादा करीब, ठीक है ना। थोड़ी बहुत अगर ग्रामर किसी को आती है तो ये क्या है, इस्म तफजील, जैसे कबूरा, बल्कि जैसे किबर, किबर का मतलब होता है बड़ाई, अकबर, ज्यादा बड़ा, बिल्कुल इसी तरीके से दना का मतलब होता है कुर्ब, और अदना का मतलब और ज्यादा करीब, ठीक है। तो दो कौसैन के बराबर बस फासला रह गया, या इससे भी करीब, इससे भी कम फासला रह गया, نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے درمیان. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پس اوحا اس نے وحی کری اپنے بندے کی طرف, ما اوحا جو بھی اس نے وحی کری. ٹھیک ہے, اب یہاں پر وحی کس نے کری؟ وحی جبریل علیہ السلام نے نہیں کری, عبدی ہی اپنے بندے کی طرف. تو کیا مطلب, اب جبریل علیہ السلام کے بندے ہیں نبی علیہ السلام؟ نہیں, نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے شاگرد ضرور ہیں, بندے تو نہیں ہیں نا, رائٹ؟ بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کری اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کری. اب یہاں پر جو ماں ہے یہ نافیہ والا ماں نہیں ہے, بلکہ یہ موصولہ والا ماں کہلاتا ہے, جس کا ترجمہ جو سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو اوحا اس نے وحی کری. ٹھیک ہے, ماں کذب الفؤاد ما را, ماں کذبا. یہاں پر جو ماں ہے یہ پھر وہی ماں نافیہ ہے نفی کرنے کے لیے. ماں کذبا, کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا. ماں کذبا اس نے جھوٹ نہیں بولا. کس نے جھوٹ نہیں بولا؟ الفؤاد, فؤاد کا مطلب ہوتا ہے سینہ. ٹھیک ہے, چیسٹ, لیکن چیسٹ بمانی قلب کے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کے اندر کئی جگہوں پر الفؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا اصل معنی تو ہوتا ہے چیسٹ, لیکن چیسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ قلب ہوتا ہے انسان کا, دل. ٹھیک ہے, تو الفؤاد بول کر کے قلب مراد لیا جا رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہاں پر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نے جھوٹ نہیں کہا. ما رآ, جو اس نے دیکھا, رآ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھا, اور یہاں پر ماں, یہ پھر ماں موصولہ ہے جس کا ترجمہ جو سے کرتے ہیں. تو پہلا ماں نافیہ ہے کہ نہیں جھوٹ بولا قلب نے, اور دوسرا ماں موصولہ ہے جو, رعا اس نے دیکھا, یعنی جو نبی علیہ السلام نے دیکھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا, بلکہ اگزیکٹلی جیسے دیکھا تھا ویسے ہی بیان کیا. ٹھیک ہے, افتمارونا ہو, یہ بہت سارے ورڈز ایک ورڈ کے اندر. ا کا مطلب کیا, یہ استفہام کے لیے, کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے, حمزہ استفہامیہ. ٹھیک ہے, تو یہ ا جو ہے اس کا ترجمہ ہے کیا. فا کا ترجمہ تو پھر سے کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا نہیں جاتا, کہ گویا کہ ایک زائدہ سا ہے, زائدہ ایڈیشنل سا ہے یہ. ٹھیک ہے, تمارونا, تمارونا کا مطلب تم شک میں پڑ کے جھگڑتے ہو, یعنی شک کی حالت میں کسی سے جھگڑنا. ٹھیک ہے نا, اس کو تمارونا کہیں گے, کہ تم لوگ جو ہے نا وہ شک کی حالت میں جھگڑتے ہو. ہو اس سے, نبی علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو تمہیں بات بتاتے ہیں نا, تو تم شک بھی کرتے ہو اور اس سے جھگڑا بھی کرتے ہو اس بارے میں. افا تمارون ہو, کیا تم لوگ جو ہے نا وہ شک کے ساتھ ان سے جھگڑتے ہو. علا ما یرا, علا کا مطلب پر, ما یرا جو اس نے دیکھا, یعنی جو انہوں نے دیکھا اس کے اوپر تم ان سے آرگیومنٹیشن کرتے ہو. ٹھیک ہے, ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اور لقد تحقیق, یعنی ویریلی, رآہ اس نے دیکھا اس کو, رآہ, رآ کا مطلب اس نے دیکھا, ہو اس کو, نزلۃ اخرى. نزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو نزلہ زکام ہوتا ہے, تو نزلہ زکام میں کیا ہوتا ہے, ناک سے کوئی چیز اترتی ہے, نیچے کی طرف اترتی ہے نا, اس کو نزلہ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, لیکن نزلہ آیا کدھر سے, عربی کا لفظ ہے اترنا, جیسے نازل ہونا. تو نزلتن اخرى, ایک اور مرتبہ اترتے ہوئے. اخرى کا مطلب ہوتا ہے another time, another, once more. ٹھیک ہے, تو نزلتن اخرى, ایک اور مرتبہ اترتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. ٹھیک ہے, تو دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر مراد ہے دوسری دفعہ. عند سدرۃ المنتہا, اب یہ دوسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو کب کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. پہلی دفعہ تو ارتھ میں دیکھا نا, زمین میں دیکھا, ٹھیک ہے, کہ افق الاعلیٰ کے اوپر وہ نظر آ رہے تھے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے تھے, 600 پروں کے ساتھ وغیرہ, یہ ساری تفصیل آگے آتی ہے. اور دوسری دفعہ کب دیکھا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر پہنچے معراج کی رات میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر نا سدرۃ المنتہا جو ہے, جو سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو, ٹھیک ہے, اور المنتہا کا مطلب ایکسٹریم لمٹ, منتہا انتہا, الٹیمیٹ لمٹس, اس کے آگے جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ جا نہیں سکتا, تو یہ فرشتوں کی فائنل لمٹ ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کو المنتہا کہتے ہیں. تو اس جگہ پر ایک بیری کا درخت ہے, یعنی عجیب, اللہ تعالیٰ نے بیری کے درخت اگائے ہوئے وہاں پر, بجائے اس کے کہ کوئی انسان ہوتا تو کہتا بھائی ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے نا اسپیشل جگہ, تو وہاں پر تو کوئی میں پیلس بناتا یا کوئی اس قسم کی کوئی عجیب و غریب قسم کی مافوق الفطرت قسم کی چیز بناتا, نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیری کا درخت لگایا ہوا ہے بس, ٹھیک ہے. ہاں, وہ بیری کا درخت جو ہے وہ عام بیری کے درختوں جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کی خوبصورتی اور اس کی شان الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہے بہرحال وہ بیری کا درخت, ٹھیک ہے. تو عند سدرۃ المنتہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار پھر دیکھا, اور یہ وہ بھی جگہ تھی عندہا جنت المأوی, کہ عندہ پاس, ہا بیری کے درخت, ہا جو ہے نا یہ پروناؤن ہے, یہ کس پروناؤن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا, یعنی اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوی, جنت المأوی بھی ہے. مأوی کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ, ٹھیک ہے, آرام سے رہنے والی جگہ, اور جنت جو ہے وہ یہاں پر وہی پیراڈائز مراد ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر سدرۃ المنتہا بھی ہے اور وہیں پر جو ہے وہ جنت بھی ہے, ٹھیک ہے. اذ یغشت سدرتا, یغشت سدرتا ما یغشا, کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جب, یغشا کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا, ٹھیک ہے, جیسے کسی کے اوپر غشی تاری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا غشی تاری ہو گئی, تو غشی کا لفظ جو ہے نا وہ یہی ہے, یغشا یعنی چھا گئی, چھا جانا, ٹھیک ہے. سدرت المن یغشت سدرتا یعنی چھا رہا تھا اس بیری پر, اس سدرا کے اوپر, ما یغشا جو کچھ چھا رہا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیا کہتے ہیں, ایک خاص بات کرنے کا انداز ہے کہ جو بھی جیسے ہے نا پیچھے ان ہوا الا وحی یوحا, نہیں کیا تھا, ہاں, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, کہ وحی کیا اپنے بندے کے اوپر جو بھی وحی کیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ یعنی ایمبیگوس چھوڑ دیا, تفصیلات ایمبیگوس چھوڑ دی, تو یہ تفصیلات جو ہے نا وہ جو ایمبیگوس چھوڑ دیتے ہیں یا انکلیئر چھوڑ دیتے ہیں نا, تو اس کا مطلب, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی عظمت کو بیان کرنا, کہ دیکھو اتنی اس کے اندر نا یعنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم چند الفاظ میں کیا بیان کریں اس کو, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ کیا بیان کریں, تو بس تم نا سمجھ لو کہ بہت ہی اونچی اونچی باتیں ہونی تھی وہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اس سدرت, یہ جو سدرا تھی نا بیری کا درخت, تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ عجیب عجیب قسم کی چیزیں چھا رہی تھیں اس وقت, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لائے تھے, تو ان کے استقبال کے لیے پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظامات تو کیے ہوں گے نا, جیسے کہ وہ آتے ہیں نا کوئی ہمارے چیف گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پھول کی پتیاں جو ہیں وہ لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, ریڈ کارپیٹ ویلکم دے رہے ہوتے ہیں, اور لائٹننگز لگائی بھی ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں فائر ورکس وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تو انتظام کیا ہوگا نا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے, اور وہ تو حقیقی آمد تھی. ایک ہوتی ہے کہ وہ میلاد کے اندر جو ہے وہ ایک امیجنری آمد ہو رہی ہے, وہ تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ میلاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو آمد تھی یہ تو حقیقی آمد تھی نا, کہ معراج کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر ہوئی تھی. तो उसके लिए तो इंतजाम होना था ना, तो वही माँ यक्षा के अंदर ना वो सारी चीजें कवर्ड है। माँ जागल बसरु व माँ तगा, जागा या जीगू का मतलब होता है कि वही बहका, बहकना, यानी जो यानी सीधे से ना हट करके जो है वो किसी दूसरी तरफ जो है वो कोई चीज चली जाए, जैसे निगाह जो है, यहाँ पर निगाह की बात हो रही है, अलबसर निगाह को कहते हैं। माँ जागल बसरु कि निगाह जो है वो नहीं भटकी, वमा तगा और ना जो है वो हद से आगे चली गई, ऐसे नहीं है कि जहां देखना था वहां देखने के बजाय जो है वो राइट लेफ्ट देखना शुरू हो गए, ना ये कि वहां देखने के बजाय उसके आगे देखना शुरू हो गए, ठीक है ना, बिल्कुल फोकस थे नबी अलैहिस्सलाम, जहां देखना चाहिए था वही देख रहे थे, ठीक है। तो माँ जागल बसरु वमा तगा। और आखिरी आयत जो आज का कवर करनी थी, लकद रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, लकद का तर्जुमा बेशक या तहकीक से करते हैं, रआ उसने देखा, मिन फ्रॉम से आयात निशानियां, रब्बी ही उसका रब, अल कुबरा आयातिल कुबरा यानी बड़ी बड़ी आयात, बड़ी बड़ी निशानियां अपने रब की तरफ से इन्होंने देखी, ठीक है ना। मेराज की रात में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कुछ देखा है, अर्श के ऊपर तशरीफ ले गए जहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे, ठीक है ना, फिर वहां पर जो है वो अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, फिर नमाज की नेमत अल्लाह ताला ने दी, तोहफा दिया नमाज का, जन्नत देखी, जहन्नम के नज़ारे देखे, राइट, और आसमानों के ऊपर पैगंबरों को देखा और ना जाने क्या क्या देखा। तो ये सारी की सारी अपने रब की निशानियां थी जो कि तहकीक नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात में देखी, ठीक है। तो वक्त चूंकि मुकम्मल हो गया है, तो अगर बस किसी को सवाल कोई है तो पूछ लें, वरना फिर हम क्लास आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो लगता है कोई सवाल नहीं है, तो हम क्लास खत्म करते हैं। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।